स्मार्ट के सहयोग से अर्पा रेडियो की प्रस्तुति
हिंसा को नो
समझ प्रेम सम्मानिका आपस में अनुबंध रहे।
25 नवंबर से 10 दिसंबर तक पूरे विश्व में मनाया जाता है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, जिसकी शुरुआत होती है 25 नवंबर से, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस, और अंत होता है 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे से। और इस बीच में जो 16 दिन रहता है वो लगातार लिंग आधारित हिंसा पर लोगों को जागरूक करने के लिए और इस हिंसा को कम करने के लिए अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। और इसी समय में, इसी दिवस के बीच में, आज हमसे बात करने के लिए इस परिचर्चा में आज हमारे साथ शामिल है सखी सेंटर की संचालिका मीनाक्षी पांडे और सखी सेंटर की काउंसलर रीमा छत्रवाणी। और इस परिचर्चा में मैं मातृका और मेरे साथ हैं सोनम। स्वागत है आप दोनों का और हमारे सभी श्रोता साथियों का इस परिचर्चा में। मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि 25 नवंबर को जो कार्यक्रम चलाया जाता है पूरे विश्व भर में, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये क्या है और इसके पीछे का ध्येय क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइएगा।
देखिए, इसके पीछे का ध्येय तो ये है कि बहुत सारी चीजों में हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को यही नहीं पता रहता है कि लिंग आधारित हिंसा क्या है। खासकर गांव में जब हम स्कूलों में जाते हैं या बहुत इंटीरियर लोकेशन पर जाते हैं तो महिलाओं को यही जानकारी नहीं रहती कि, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की मैं बात करूं या फिर कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की मैं बात करूं, उनको लगता है कि अगर हमारे साथ मारपीट हो रही है तो वही सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस है, और अगर हमारे पास पैसे का आधिपत्य नहीं है या हम कमा रहे हैं, पति ले रहा है, तो वो उसका अधिकार है। तो बहुत सारी चीजों में महिलाओं को ये जानकारी नहीं है, तो उनको एक जागरूकता लाना उनके बीच, उनको समझाना कि एक्चुअल में लिंग आधारित हिंसा होती क्या है, अवेयर करना ताकि वो उनके प्रति कठोरता से कदम उठा सके अगर वो उनसे पीड़ित है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताना कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, पॉक्सो है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न है, इवन दहेज है, तो ये सारी चीजें क्या है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को कम आंका जाता है या उनके विचारों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण जो है ये हिंसा होती है। जब हम काम करते हैं तो ऑफिस में हम लोग देखते हैं कि बहुत से मेल कलीग जो है महिलाओं के रंग रूप को लेकर, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर तरह तरीके की बातें करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ लिख भी देते हैं जिससे महिलाएं काफी परेशान हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती है, उनको ये तक नहीं लगता कि उनका विरोध वो कैसे करे। बहुत जगह मैंने देखा है कि जहां पर आंतरिक समिति होनी चाहिए, जहां पर 10 से ऊपर महिलाएं हैं, वहां पर आंतरिक समिति कहीं कहीं नहीं बनी है। उनको ये भी तक नहीं पता है, यदि आंतरिक समिति में चीजें नहीं होती हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो समिति हमारी बनी है जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं वहां पर भी हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी न होने के कारण और एक्चुअल में हम वाकई पीड़ित हैं ये नहीं पता होने के कारण भी लोग इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य है कि थोड़ा इंटीरियर लोकेशन पर जाकर गांव की महिलाओं को, खासकर जो मेन स्ट्रीम के वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो गए, स्व सहायता समूह की महिलाएं हो गई, स्कूल के टीचर्स हो गए, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उन तक ये जानकारी पहुंचाना जरूरी है कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है या फिर ये जो 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक की जो भी एक्टिविटीज लोग कर रहे हैं तरह तरीके से, वो सिर्फ लोगों को ये बताना है कि भाई एक्चुअल में आपके साथ जो हो रहा है या आप जो फील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिंग आधारित हिंसा से जुड़ा हुआ है, आप बसरते उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो उद्देश्य मेन ये है कि उनको समझाना, बताना, उनकी सोच को, उनकी जो दबी आवाज है उनको कहीं ना कहीं सामने लाना ताकि वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार है, शोषण है, उनके खिलाफ आवाज उठा सके और भी महिलाओं को लेकर आगे बढ़ सके।
जी, जैसे हम हिंसा बहुत अलग अलग मायनों में जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जब एक शब्द आता है लिंग आधारित हिंसा तो ये स्पेसिफिकली हम किस चीज को कहेंगे? रीमा मैम आप बताएंगे।
लिंग आधारित हिंसा, जैसे कि अपन देखते हैं कि हिंसा जो होती है वो होती तो सबके साथ है, लेकिन महिलाओं के साथ अगर हो रही है, ठीक है, तो महिलाएं समझ नहीं पाती हैं जो चीजें हो रही हैं उनके साथ। लिंग आधारित हिंसा एक प्रकार से वही है कि महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है, महिलाओं को समझने की जरूरत है कि हिंसा हमारे ऊपर ही हो रही है। कई बार ये होता है कि वो चीजों को बहुत सामान्य वे पे लेती हैं, वो लिंग आधारित है, कहीं ना कहीं वो महिलाओं के साथ ही होती है, इसके लिए उनको अवेयर करना।
और बेसिकली जो हम आजकल थर्ड जेंडर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे लोग उनको खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब चलते हैं तो हमारे मुंह से अरे ये क्या कर पाएगा या ये क्या कर पाएगी, इस तरीके की चीजें, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक भेदभाव, एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं कि भाई ये इस थर्ड जेंडर के हैं तो इनको वो सम्मान, वो अधिकार नहीं है सोसाइटी में। खासकर बहुत से पढ़े लिखे लोगों की भी मैं बात आपको बता रही हूँ, उनको एक्सेप्ट करना और उनके साथ आगे बढ़ना ये बहुत मुश्किल काम है, जो धीरे धीरे लोग कुछ मुहिम के या फिर सोशल सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर किसी इस तरीके की गतिविधियों से जुड़े हो तो कहीं ना कहीं वो लोग तो उजागर हो रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली में भी अगर कोई ऐसा बच्चा होता है या फैमिली तक उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसकी लिंग के कारण उसका भेदभाव हो रहा है। जब हम पुरुषों की बात करते हैं या महिलाओं की बात करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में फिट है कि घर का काम लड़के नहीं करेंगे, घर का काम लड़कियां करेंगी, क्यों? क्योंकि ये बहुत पुरानी चीजें हैं, या फिर हमने अपनी मदर को देखा कि वो घर में रोटी बनाती है, पहले पापा को खिलाती है फिर खुद खाती है। जबकि कायदे से एक महिला जो घर को देखती है, पूरे परिवार की देखरेख करती है, सबसे ज्यादा पोषण की, सबसे ज्यादा देखभाल की, केयर की और रिस्पेक्ट की जरूरत उसको है, लेकिन फिर भी हम लोगों का क्या, ये तो उसकी जिम्मेदारी है, ये तो उसका कर्तव्य है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये शुरू से चली आ रही है और अब इसको बदलने की जरूरत है। लड़की है तो पिंक पहनेगी, लड़का क्यों नहीं पहन सकता, है ना? तो ये हम लोगों के दिमाग में, हम लोग कुछ भी लाते हैं, इवन पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आते हैं तो लड़कियों की बात आती है तो पिंक कलर, रेड कलर, इस तरीके की चीजें वो प्रेफर करते हैं। खिलौनों की बात आती है तो उनको किचन सेट दे दिया जाता है, लड़कों को बंदूक दे दिया जाता है या कोई गेम दे दिया जाता है, तो ये हम क्यों नहीं कर सकते? ये बात लड़कियों के अंदर खुद अब आनी चाहिए कि मैं क्यों नहीं प्लेन उड़ा सकती हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग अब इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, शायद लोगों की सोच को पछाड़ कर या लोगों की सोच को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं, और ये वाकई काबिले तारीफ है कि बहुत सी महिलाएं इस ओर आगे बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बात हम कर रहे हैं, महिला है या थर्ड जेंडर है, तो उसके लिंग के बेस पर हम डिस्क्रिमिनेशन करते कि भाई लड़की है तो ये काम वही करेगी, लड़का है तो ये वो करेगा। एक छोटी सी सोच और छोटा सा अगर नजरिया बदलता है ना तो बहुत चीजें बदलती हैं। तो कहीं ना कहीं उस नजरिए को बदलने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं है, चल भी रहा है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत प्रयास करने की जरूरत है। खासकर जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो महिलाएं बहुत उदासीन रवैया रखती हैं, बहुत हद तक वो टॉलरेट करती हैं शोषण को, अत्याचार को, इसलिए कि अपने परिवार के अगेंस्ट कैसे जाऊंगी। लेकिन परिवार वो है जो उनको सम्मान दे, उनको अधिकार दे, उनको बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे, सम्मान दे, वो तो परिवार है। और अगर जहां मारपीट है, अत्याचार है, शोषण है और सम्मान नहीं है तो फिर वो परिवार कहलाने के भी लायक नहीं है। तो मैं महिलाओं से, मेरा बस यही है कि वो आवाज उठाएं, क्योंकि जब तक आप लड़ेंगी नहीं उसके अंजाम का पता आपको नहीं होगा कि क्या होगा। हारने के डर से लड़ाई स्टार्ट ना करें, ये सोच कहीं पर भी सही नहीं है। तो लड़िए, जीत आज नहीं तो कल आपको जरूर हासिल होगी।
जैसे सोच के बारे में बात की कि महिलाओं के लिए जो नजरिया है अब सोच बदल गई है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोच या बदलाव है वो खुद से शुरू हो रही है। खुद में बदलाव करना, खुद की सोच को बदलना, उसके बाद फिर समाज परिवार की सोच को बदलना, इस बारे में हम कह सकते हैं ना?
जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं खुद की सोच से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सोशल वर्क में एक लाइन कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी सहायता नहीं कर सकता उसकी सहायता कोई नहीं कर सकता। तो एजेंसी कितनों भी हो, थाने हो, एनजीओज हो, लेकिन अगर वो महिला खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाएगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। लोग अक्सर बातें करते हैं कि जब महिलाएं पढ़ी लिखी है तो वो स्टैंड ले सकती है, गांव की है तो वो कैसे लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बात यहाँ दिमाग से स्वतंत्र होने की है। जो व्यक्ति उस लड़ाई के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं सोचता है कि मुझे इसमें लड़ना है और जीत हासिल करनी है, वो डेफिनेटली लड़ता है। बहुत सी पढ़ी लिखी भी लड़कियां ऐसी हैं जो कमाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन उनके अंदर खुद की वो सोच नहीं है कि मुझे इन चीजों से निकलनी है। तो बहुत छोटा सा नजरिया बहुत सारी चीजों को बदल देता है। एक समय था जब भारत में बहुत सारी कुरीतियां थी, कुछ लोग आगे आए, उनकी सोच से लोग जुड़े और आज वो परिवर्तन हम समाज में देख रहे हैं।
जी, तो जैसे लिंग आधारित हिंसा की बात हो रही थी और आपने जैसा कहा कि वो अगर हम लड़के और लड़के में ऐसा अंतर करें, काम के आधार पे उनको बांटें या रंगों के आधार पे उनको बांटें, उनकी पसंद को बांटें। जी, तो ये तो शुरुआत हो गई, लेकिन अगर हम लिंग आधारित हिंसा के कारणों की बात करें तो ये कारण क्या हो सकते हैं या क्या है?
एक्चुअली में देखा जाए तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे मैक्सिमम गांव है, यहाँ पे रूढ़िवादिता चलती है, हम वहाँ पे सिर्फ पुरुषों को दोष नहीं दे सकते, वहाँ पे महिलाएं भी इस चीज के लिए दोषी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर कोई केस आता है ना तो वो यही रहता है कि मेरे बेटे ने तो मारा है, क्या हो गया ना, तो हमने भी सहा है, उनका ये थॉट रहता है। तो भाई इस थॉट में अगर रहेंगी तो वो अपनी बहू के लिए कैसे स्टैंड लेंगी, तो हमको तो सबको अवेयर करना पड़ेगा।
और मुझे एक लगता है कि जो हम आर्थिक रूप से हम निर्भर हैं, जब हम बात करते हैं कि तुम अलग क्यों नहीं हो रही हो अपने हस्बैंड से, तो उसका ये कहना है कि मैडम मैं कैसे हूँ, मैं कमाती नहीं हूँ, दो दो बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। तो एक मेन कारण जो मुझे समझ में आता है आजकल, गाय बहुत सी महिलाएं पढ़ी लिखी तो है लेकिन बहुत सारी फैमिली में जो अभी बहुत समाज में हम प्रतिष्ठा रखते हैं या बहुत सारी चीजें हैं, उनके यहाँ पहला रहता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियां काम नहीं कर, पढ़ी लिखी हैं सब कुछ है लेकिन वो काम नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये शुरुआत ही है, ये शुरुआत स्टार्ट हो जाती है कि भाई अब अगर आपको जो भी कहा जाएगा या जो भी आपके साथ हो रहा है, सहने के अतिरिक्त आपके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन यदि वो कमाती है, अपने पैरों पर खड़ी है, तो कल को वो ये स्टैंड ले सकती है कि अगर मेरा बच्चा भी है तो अपने बच्चे को लेकर मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। आर्थिक निर्भर बहुत सी महिलाएं नहीं है, सोच बहुत सी महिलाओं की जो काफी लंबे समय से चली आ रही है वो खुल नहीं पा रही हैं। हम बताते हैं लेकिन उनके अंदर वो चेतना नहीं आ पा रही है, समय लगेगा लेकिन कहीं ना कहीं वो दिमाग में है कि ये चीजें गलत चल रही है, लेकिन उसका विरोध वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो सोच चली आ रही है ना कि नहीं सहते हैं, मेरी मदर ने भी सहा, जैसा कि रीमा जी ने बताया कि बहुत से औरतें हैं वो कहती हैं कि भाई मेरे पति मुझे मारते थे, मेरा बेटा मार रहा है तो क्या हो गया। तो ये एक जो है कल्चर के तौर पर लोग आजकल इसको चलाते हैं कि भाई ये तो संस्कृति है, मैं भी मेरे पति भी मारते थे, मैं कुछ नहीं करती थी, मेरी माँ ने भी ऐसे ही किया, मेरी दादी ने भी ऐसे ही किया। तो ये सोच अब बदलने की जरूरत है, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि सोच बदलने की शुरुआत व्यक्ति की खुद से है। तो व्यक्ति आर्थिक के साथ साथ यदि मानसिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र नहीं समझता है, दोनों का ही तालमेल बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हर लड़कियों को ये चाहिए कि वो शादी भले बाद में करें, पहले वो आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त बनाए, क्योंकि एक निर्णय लेने की क्षमता कोई हमको क्यों देगा, हम अगर पढ़े लिखे हैं, हम अगर अपने पैरों पर खड़े हैं, डिसीजन ले सकते हैं, तो हम अपने परिवार में अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हम आवाज भी उठा सकते हैं। लेकिन एक लड़की जिसको ये नहीं पता है कि वो इस घर से निकलेगी तो उसके ऊपर छत रहेगा या नहीं रहेगा, अपने बच्चे को वो कल सुबह का खाना खिला पाएगी या नहीं खिला पाएगी, वो महिला कैसे निर्णय लेगी कि मुझे इस घर से निकलना होगा। बहुत सारे पेरेंट्स हैं 18 होते ही ये सोचते हैं कि भाई चलो अब ये बालिक हो गई है, इसकी शादी कर ले। लड़कियां भी बहुत खुशी खुशी पढ़ने का जो बहुत इंटीरियर, या मैं इंटीरियर की बात छोड़ू, हम भी अगर बिलासपुर से लगे गांव में जाते हैं या फिर थोड़े दूर गांव में जाते हैं, तो जब हम महिलाओं से बात करते हैं तो बहुत शिक्षा के प्रति जागरूकता या बहुत उत्साह उनके मन में नजर नहीं आता। ये रहता है कि बस दीदी ये 18 साल की हो जाएगी तो इसकी शादी कर देनी है। लड़कियां भी खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेती। दिक्कत कब आती है, जब उनके लाइफ में ये फेज आता है, पति मारता है, समाज उनको कहीं ना कहीं कि भाई तू निकल जाएगी, और ये हर कुछ जुड़ा हुआ है। जब आप किसी अपने मदर फादर से पूछते हैं तो कहते बेटी तू कहाँ जाएगी, तू तो कमाती नहीं है, हम मायके में तुझे नहीं रख सकते। वहां पर ये कारण हो जाता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ाई लिखाई न होने के कारण वो जॉब नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं शिक्षित होना, शिक्षा के साथ अपने पैरों पे खड़ा होना, ये दो एक आधार स्तंभ है। और जैसा कि रीवा जी ने बताया कि सोच और जो रूढ़िवादिता है उसको भी कहीं ना कहीं हमको ब्रेक कर आगे बढ़ना है। तो ये प्रमुख कारण है जो मैंने अपने काम के दौरान, अपने फील्ड में लोगों से मिलने के दौरान, से बातचीत के दौरान मैंने जो महसूस किया है।
जैसा कि आपने अभी आर्थिक निर्भरता की बात की है, लेकिन हम कई बार अपने आसपास देखते हैं कि जो महिला शिक्षित होती है या आर्थिक रूप से मजबूत होती है, वो भी कभी कभी कदम उठाने में हिचकिचाती है, तो ऐसा क्यों होता है?
देखिए अभी मैंने जैसे रिलेट किया, ऐसा इसलिए होता है जैसे शो कॉल्ड सम प्रतिष्ठित परिवार
जी।
प्रतिष्ठित परिवार का एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो करो वो चार दीवारी के पीछे करो। सोसाइटी में बहुत नाम है जिनका, जरूरी नहीं कि उनकी पारिवारिक स्थिति, व्यक्तिगत जीवन है वो अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि एक जिम्मेदारी, एक सोच, एक बोझ कह लीजिए, एक माता पिता अपनी बच्ची को दे देते हैं कि बेटा हमारी इज्जत तेरे हाथ। तो कहीं ना कहीं लड़की पढ़ी लिखी जरूर है लेकिन कहां से वो स्वतंत्र नहीं है, मानसिक रूप से, अपने दिमाग से वो कहीं ना कहीं कुछ परंपराओं से, कुछ बोझ तले वो दबी हुई है, अपने माता पिता की इज्जत, अगर वो वापस चली जाती है तो सोसाइटी में उसके माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी, पति छोड़ देता है तो सोसाइटी एक औरत को किस नजर से देखती है। तो कभी कभी आप देखिएगा गांव की औरतें जो है स्टेप लेती हैं, और भले वो मजदूरी करने जाती हैं लेकिन उनको लगता है कि मेरा पति यदि मुझे मारता है तो मैं कोर्ट में इससे लड़ूंगी, या फिर मैं सखी में या फिर महिला थाने में जो भी एजेंसी है या बहुत सारे एनजीओ आजकल आगे आ रहे हैं इस फील्ड में उनसे जुड़कर वो आगे काम करती है ताकि इस तरीके की महिलाओं को जो है वो शोषण से बचा सके। कि भाई आप स्वतंत्र अगर आर्थिक रूप से हैं और आप सोचते हैं कि मैं यहां से लिख लूंगी तो मेरे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी, तब तो आप कभी उस बेड़ियों को तोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि घर से एक कदम एक महिला का आगे निकलना बहुत बड़ी बात है। वो अगर कदम निकल रहा है तो वो वापस जाएगा तो 10 तरीके की अवहेलनाएं, 10 तरीके की बातें, 10 तरीके की इग्नोरेंस उसको झेलना पड़ेगा। उस लड़ाई में उसको शायद उन अपनों का भी साथ ना मिले जिनकी इज्जत की खातिर उसने इतने दिनों तक सारी चीजें सही है। आप खुद यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो एक पूरा एनजीओ या पूरा ग्रुप क्या कोई भी आपको इस दलदल से नहीं निकाल सकता। एक स्टेप एक कदम की जो बात हम कर रहे हैं वो कदम यदि आपने निकाल लिया तो आप समझिए दिक्कतें आएंगी लेकिन आपको आगे बढ़ना।
तो जैसे रूढ़िवादी सोच की बात आई कि रूढ़िवादिता लगातार चले आ रही है और उसी रूढ़िवादी सोच की वजह से कहीं ना कहीं ये महिलाएं हिंसा सह रही है। तो इन रूढ़िवादी सोचों में एक सोच मेरे ख्याल से पितृसत्तात्मक समाज की जो सोच है जो सबसे ज्यादा हावी कर रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे।
बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जैसे महिलाएं आती हैं, बेसिकली मैं काउंसलिंग करती हूँ इसलिए बार बार वही चीजें आ जाती है मेरे सामने। जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो मैम ने जैसे बताया अभी मीनाक्षी मैम ने कि वो निर्णय नहीं ले पाती है, निर्णय के लिए वो या तो अपने पिता पे निर्भर रहती है या तो अपनी माँ पे, और माँ भी किस पे, पति पे। एग्जैक्टली, वो डिपेंड रहती है और ये चीजें हैं। और जो महिला इस चीज से बाहर निकली है डेफिनेटली वो अपने एक थप्पड़ के जवाब के लिए कोर्ट तक जरूर गई है, लेकिन अगर नहीं निकली है उनको निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो पूरी तरीके से डिपेंड है।
तो पितृसत्तात्मक समाज में मतलब महिलाएं जो है वो अपने सिर्फ एक एक फैसले के लिए
एक रुपए
खर्च करने के लिए भी वो बहुत हद तक निर्भर होती है और एक इजाजत की दरकार होती है।
बिल्कुल, आपने कहा ना एक एक रुपए वो डिपेंड रहती है पति के ऊपर आर्थिक रूप से भी और अपने घर वालों के ऊपर, अगर वो पति से अलग हो रही है तो अपने पिता के ऊपर, तो कहीं ना कहीं है ये चीजें।
कोई ना कोई घर में होता है, वो चाहे पति हो, पिता हो, दादा हो या भाई हो।
हाँ।
है ना, हर एक व्यक्ति वो, क्योंकि वो सोच आ गई है अगर महिला भाई बहनों में बड़ी है महिला, लेकिन फिर भी अपने फैसलों के लिए वो अपने छोटे भाई पे भी निर्भर है।
क्योंकि हम लोग फैमिली में बहुत बार देखते हैं जब अपनी मदर से पूछते हैं कि भाई मैं बाहर जा सकती हूँ कि नहीं, तो उनका एक है कि अपने पापा से पूछो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्या चलता है कि हमारी मदर से नहीं, हमको क्या करना हर चीजों के लिए, मेरी मदर किस पे डिपेंड है, मेरे फादर पर। तो मेरी क्या सोच होगी, मेरी जब शादी होगी तो मैं किस पर डिपेंड रहूंगी, अपने हस्बैंड पे। आपने बहुत जगह देखा होगा लड़कियां अच्छी गवर्नमेंट जॉब में भी रहती लेकिन उनके एटीएम और ये सारी चीजें हैंडल कौन करता है, उनके हस्बैंड। बहुत जगह आपने आज ये भी देखा होगा कि महिला प्रधान है लेकिन बहुत जगह उनका कार्यभार कौन देखता है, उनके हस्बैंड। और ये है, जब हम फोन लगाते हैं तो है महिला लेकिन उठाते उनके हस्बैंड है, तो क्यों?
इवन उनको अपने अकाउंट नंबर, एटीएम के पासवर्ड कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं मालूम। कौन हैंडल करता है, मेरे हस्बैंड। पिन क्या है वो मेरे हस्बैंड जानते हैं। मेन कारण यही है कि हम लोग यहाँ से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे। जैसे एक कोल्हू का बैल होता है ना, यदि आप उसे कोल्हू से खोल भी देंगे तो वो घूमता रहेगा क्योंकि वो उसके दिनचर्या, उसकी आदत, उसके जीवन का हिस्सा बन गया है। एक थप्पड़ भी यदि आपको पड़ रहा है और 10 थप्पड़ पड़ रहा है तो बात 10 या 2 थप्पड़ की नहीं है, बात यह है कि आप पर कोई हाथ नहीं उठा सकता।
तो जैसे इतनी सारी बातें हुई और इसमें हमने बहुत सारे अलग अलग चीजें देखी। लिंग आधारित जो हिंसा होती है ये किन स्वरूपों में हमारे आसपास मौजूद है, कैसे दिखती है?
देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में है। सबसे पहले तो आपके परिवार में होता है, हम को लगता है, लेकिन आज भी बहुत से लोग लड़के के पैदा होने पर और लड़कियों के पैदा होने पर बहुत अलग तरीके से उस समारोह का आयोजन करते हैं। बहुत जगह है, वहां से ही हर चीज स्टार्ट होती है। फिर लड़की बड़ी होती है तो उसको लगता है थोड़ा घर का काम सिखा दो, आगे ससुराल जाना है। फिर जब शादी की बात आती है तो शादी में निर्णय की बात आती है तो वहां पर भी लड़कियों को बोला जाता है कि भाई ये लड़का है, ये ऐसा करता है, इतना कमाता है, इतनी जायदाद है, इतनी संपत्ति है, वो लड़का कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, इस पे बहुत सारे माँ बाप आज भी कोई डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जब भी शादी की बात होती है मेरा दामाद ये करता है और उसकी इतनी संपत्ति है, लेकिन वो कैरेक्टर का या चरित्र का कैसा है, आपकी लड़की को कितना सम्मान देगा, ये नहीं। तो ये बचपन में पैदा होने से लेकर, काम डिवाइड करने से लेकर, पालन पोषण के तरीकों से लेकर, शादी के निर्णय से लेकर, पति के घर जाने पर, फिर उन्होंने जो देखा फिर वही है कि पति फिर उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके बाद उसका बेटा कंट्रोल कर रहा है। तो ये चीजें हर जगह आपको देखने को मिलती है। वर्क प्लेस में किसी महिला का आगे यदि प्रमोशन हो जाता है तो बहुत से पुरुष लोग उसको डोमिनेट करते हैं कि इसके अंदर कुछ नहीं था, पता है कैसे क्या गई होगी। तो ये जो शब्द है ना, ये हर व्यक्ति के दिमाग में चलता है। वहीं जब एक पुरुष को प्रमोशन मिलता है तो हम लोग योग्यता की बात करते हैं, लेकिन जब एक महिला को प्रमोशन मिलता है तो हम कहीं ना कहीं उसके चरित्र से बात को जोड़ देते हैं। हर एक जगह आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, स्कूलों में टीचर्स के बीच मिलेगा। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर आज आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को ना मिले। है, कुछ महिलाएं इसको इग्नोर करके आगे बढ़ती हैं तो वो आज हैं बहुत अच्छी मुकाम पर है, और कुछ अगर दब के पीछे चली जाती हैं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो हर एक क्षेत्र में, चाहे हम कहीं काम कर रहे हो, हमारा घर हो, हमारे बच्चे की परवरिश करने का तरीका हो, हमारी बच्ची की शादी हो, उसका काम हो, चाहे वो फिर बुजुर्ग होती है तो उसके बच्चे का उस पर नियंत्रण हो, तो कहीं ना कहीं हर जगह एक लड़की को ये भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन का जो है सामना करना पड़ता है।
महिलाओं की बात की जाएगी तो भ्रूण में आने तक, मतलब माँ के गर्भ में आने से लेकर
उनके कब्र में पहुंचने तक वो इन भेदभाव का सामना करती हैं, हर स्टेज में करती हैं।
और ये पूरे भारतवर्ष की हम बात करें या पूरे विश्व भर की बात करें, सारे जगह पे मामला एक ही है।
देखिए, हमको ऐसा लगता जरूर है कि फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत जगह स्थिति आपको बहुत बदतर भी दिखेगी। फॉरेन कंट्री की जब बात करते हैं तो वहाँ रिश्तों का स्वरूप देखिए बहुत अलग है। वहां पर व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर है कि इसने मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दी, मेरा इससे कंपेटेबिलिटी नहीं बन रही है, तो मैं इससे अलग हो जाऊंगी, ठीक है। लेकिन जब हम भारत में शादियों की बात करते हैं तो आजकल लोग देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर भी पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम चीजों को आगे नहीं चला पा रहे हैं या रिश्तों को आगे नहीं चला पा रहे, तो उसका रीजन ये भी है कि हम लोग बहुत सारी चीजों को बाहरी देशों से एक्सेप्ट किए हैं। एडजस्टमेंट की जब बात करती हूँ हमेशा, तो मैं कभी भी ऐसे एडजस्टमेंट की बात नहीं करती हूँ। मैं हमेशा बात करती हूँ कि भाई यदि आपका हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट देता है, अगर वो भले कुछ कम कमा रहा है तो आप वहां एडजस्ट करिए, क्योंकि वहां पर वो आपको क्या दे रहा है, सम्मान दे रहा है ना। तो स्वरूप अलग है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, कुछ कम हो सकता है या जैसे भी, लेकिन कहीं ना कहीं हर देश में ये देखने को मिलता है। वहां पर महिलाएं तुरंत अपने हस्बैंड को छोड़ने में समय नहीं लगाती, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं, हम लोगों ने इतनी चर्चाएं की, हमने यही चर्चा की कि यहाँ पर किसी को छोड़ के आगे बढ़ना ही बहुत बड़ी बात है
जी।
हमारे बीच सामंजस्य नहीं है, शारीरिक रूप से नहीं है, मानसिक रूप से नहीं है, आर्थिक रूप से नहीं है, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन हम रिश्तों की बात अगर करते हैं तो हम यहाँ क्या सोचते हैं कि भाई यदि चीजें अच्छी चल रही है तो उस चीजों को हम थोड़ा सामंजस्य बनाकर चलें। तो हम लोग जब किसी देश की बात करते हैं, किसी राज्य की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें वहाँ की संस्कृति पर, वहाँ के कल्चर पर भी डिपेंड करती है, लेकिन आपको भेदभाव हर जगह देखने को मिलेगा। आप चाहे किसी भी जगह की महिलाओं से बात करें, वो इन चीजों को जरूर बताएंगी आपको। स्वरूप अलग हो सकता है, भेदभाव का तरीका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आपको भेदभाव हर जगह देखने मिलेगा।
देखा जाए तो वहाँ की महिलाएं ऐसी हैं कि वो चीजें निकल जाती है, मतलब जैसे कि मैम ने कहा ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रहा तो वो म्यूचुअल से अलग हो गए, लेकिन यहाँ पे उस चीज को अलग होने के लिए बहुत समय लगता है। यही चीजें हैं, हिंसा वहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा बहुत स्वरूप में अंतर है,
क्योंकि हमें लगता है, लेकिन जब हम किसी रिश्ते से अलग होते हैं और वो एक तकलीफ जो मानसिक हमें होती है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात। देखिए, मेरा ये कहना है कि भाई असमानता वहाँ है जहाँ पर आपको चोट पहुँच रही है, जहाँ आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, जहाँ आपको सोचने समझने नहीं दिया जा रहा है। आप बोलना चाह रही हैं लेकिन आपको स्वतंत्रता नहीं है, तो भी आप असहज और अपने आप को कमजोर महसूस करेंगी। तो ये हर जगह छोटे रूप में होगा, बड़े रूप में होगा, लेकिन होगा।
तो जैसे ये सारी बातें हुई और ये कहा गया कि सबसे पहले तो जरूरी है उन चीजों को समझना कि हमारे ऊपर हिंसा हो रही है, और इस बीच में हमने ये बात भी की कि आवाज उठाना बहुत जरूरी है, एक कदम उठाना बहुत जरूरी है, बस एक कदम की दरकार है। यहाँ पर अगर कोई महिला कदम उठाना चाहती है या हिंसा से बाहर आना चाहती है तो उसका वो पहला कदम क्या होगा?
देखिए, उस पहला कदम तो ये सोच के उठाएगी कि जो भी हो मुझे पीछे पलट कर नहीं देखना है। ठीक है, आजकल तो इतने सारे एजेंसीज काम कर रही है, बहुत से हम खुद सखी से हैं, बहुत लोग हमारे पास आते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि मैडम हम क्या करेंगे। ये कदम में कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की जो संस्थाएं हैं वो भी उनका बहुत सहयोग करती हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हमारे पास आई हैं और उसके बाद वो समझाने के बाद क्या होगा कैसा होगा करने के बाद फिर वो आगे बढ़ी हैं। उनके मन में ये रहता है कि मैं यहाँ से क्या वापस जाऊंगी तो मेरे को उस परिवार में रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? कोई आपको उस घर से नहीं निकाल सकता। निकलती महिलाएं कब हैं? जब वो या तो उस मारपीट का जवाब नहीं दे पाती हैं या उसका विरोध नहीं कर पाती हैं। उनको ये रखना चाहिए कि ये घर मेरा है और मैं अपने सम्मान के लिए निकल रही हूँ और इस घर में सम्मान के साथ रहूंगी भी। ये जो सोच है ना, यही उसका पहला कदम है कि मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ना है, पीछे नहीं पलटना है। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो पीछे जाने का ऑप्शन क्या रहता है? अपने सम्मान के साथ। लेकिन बिना सम्मान अगर आप वापस जाओगे ना तो आपकी स्थिति पुनः वही हो जाएगी। तो पहली सोच यही है, पहला कदम यही है कि अब मैं लड़ने के लिए निकली हूँ तो मुझे उस कदम को पीछे लेकर नहीं जाना है। उसके लिए हम सखी हैं, आजकल तरह तरीके की एनजीओस काम कर रही हैं, कोर्ट कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर अब काफी सेंसिबल है, पहले की तुलना में बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनको हिम्मत ये भी मिलता है कि भाई बहुत से लोग हैं जो इस लड़ाई में मेरा साथ देंगे, मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे क्या करना है कैसे करना है उस लड़ाई में, मेरी ही जैसी महिलाएं जो इस फील्ड में जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं वो मेरे साथ रहेंगी या मेरे साथ आगे बढ़ेंगी। तो ये भी उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
तो जैसे हमने अपने सभी श्रोताओं को ये बताया कि आप सखी वन स्टॉप सेंटर से हैं, तो अब हम आपसे सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में कुछ विस्तार में जानकारी चाहेंगे कि सखी वन स्टॉप सेंटर है क्या, किस तरीके से काम करता है और महिलाओं के लिए किस तरीके की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाती है।
सखी वन स्टॉप सेंटर जो है वो 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से ही इसका आने का था और 2017 में ये सारे डिस्ट्रिक्ट में है। तो एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे महिलाओं को 5 प्रकार की सुविधाएं दी जाती है एक ही छत के नीचे। किसी भी प्रकार की हिंसा से जैसे पीड़ित है महिला, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे दहेज हो, चाहे फिर रेप केस हो या कुछ भी हो, तो वो महिला इस सखी सेंटर में 5 तरीके की सुविधाएं ले सकती है। फर्स्ट तो यही है कि उसका काउंसलिंग, वहाँ पे साइकोसोशल काउंसलिंग होता है जहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो उसके मनोबल बढ़ाने के लिए है ये काउंसलिंग, उसको बताना कि साथ जो हिंसा हुई है उसमें वो आगे क्या कर सकती है, उसका मनोबल बढ़ाना। दूसरी चीज है हमारे यहाँ पे आश्रय की भी व्यवस्था है जिसमें 5 बेड है और 5 दिन का शेल्टर का है जहाँ पे आपातकालीन स्थिति में महिलाएं वहाँ पे रह सकती हैं और रहने के दौरान हम उसके प्रकरण में, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का प्रकरण हो या किसी भी प्रकार का, उस प्रकरण में हम काम करते हैं आगे के लिए। दूसरी चीज है उसको चिकित्सा की भी व्यवस्था वहाँ पे है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे एक ANM मैडम है जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से है, वो हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके उनका चिकित्सीय जांच करवा सकते हैं। लॉयर का भी है, काउंसलिंग सेशन में हम लॉयर्स को भी इंक्लूड करते हैं ताकि उनका जो भी प्रकरण है उसके अकॉर्डिंग लॉयर उनको सजेशंस दे सके और बता सके कि वो क्या क्या चीजें कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को नहीं पता होता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्या है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस पर सपोर्ट करती है और यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं और उनके थ्रू उनको आगे की प्रक्रिया बताती हैं।
जी, तो जैसे मान लीजिए कि कोई महिला उन पर हिंसा होने वाला कोई भी केस लेकर वो सखी वन स्टॉप सेंटर आती है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से उनके केस पे काम किया जाता है?
अगर कोई महिला हिंसा अगर हो रही है, अगर वो आ रही है हमारे यहाँ पे, तो पहली चीज तो यही देखा जाएगा कि उसकी परिस्थिति क्या है, क्या वो तत्काल उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है या फिर 1-2 दिन बाद एक्शन लेने की आवश्यकता है। अगर तत्काल की आवश्यकता है तो हम कोऑर्डिनेट करते हैं, अगर थाने की नीड है तो हम थाने से कोऑर्डिनेट करके उसके प्रकरण में आगे की चीजें करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रकरण, उसके क्या प्रकरण है। और दूसरी चीज, वो क्या चाहती है, वो अगर काउंसलिंग चाहती है, वो चाह रही है कि मेरे घर वालों को बुलाया जाए, उनको समझाया जाए, या मैं क्या चाहती हूँ, सारी चीजें हम बैठ के करें, तो हम उसके लिए काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। काउंसलिंग में अगर नहीं हो पाती है चीजें, देन फिर वो आगे कोर्ट के लिए चला जाता है, हम उस पर आगे बढ़ाते हैं।
जैसे कि तत्काल में ऐसा रहता है, बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने काम किया है उनको रेस्क्यू कराने से। देखिए तत्काल में दो तरीके की आपको सहायता ज्यादातर देखने को मिलती है, एक तो पुलिस सहायता रहती है, दूसरा चिकित्सकीय सहायता रहती है। बहुत सारे केसेस में पति बंधक बना के रखते हैं अपनी पत्नियों को, उनका मोबाइल छीन लेते हैं, उनको एक रूम में बंद कर देते हैं। कुछ लोग देखते हैं या कुछ आसपास के लोग, तो कभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि गोपनीय कॉल आया है, बस एक नंबर था, बस बता दिया गया कि भाई यहाँ पर इस तरीके की कोई घटना घट रही है, तो हम अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और संबंधित थाने को लेकर हम उस घटना स्थल पर जाते हैं। यदि वो परिस्थिति है, अगर वो बोलती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो हम उसको रेस्क्यू करके लाते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि बहुत सी महिलाएं अकेली हैं, गर्भावस्था में हैं, या बहुत से कुछ केसेस हैं, तो हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट या 108 के थ्रू उनको लाते हैं और एडमिट करवा के उनका उपचार भी करवाते हैं। तो ये दो आपको तत्कालिक सहायता और आपातकालीन सहायता में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। प्रक्रिया की अगर वो बात कर रहे हैं कि क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये है कि हम लोग सब सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। भारत सरकार का अपना सॉफ्टवेयर है, उसमें सारे केसेस की एंट्री होती है, हर एक विक्टिम का अपना एक फाइल रहता है, उस हर विक्टिम का एक केस नंबर रहता है, उस नंबर से ही हम लोग उसको देखते हैं, पहचानते हैं, काम करते हैं, ठीक है। उसके सारी आवेदन कथन जो भी डॉक्यूमेंट, उसके सारी चीजें हम काम कर रहे हैं, वो सारा उसमें एकत्रित हो जाता है। तो भविष्य में कभी भी उसको कोई दिक्कत होती है तो उस फाइल को रीओपन करके हम उस पर काम करते हैं। तो ये तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई कि भाई हम क्या काम करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए केस वर्कर हमारी संस्था में बैठते हैं और वही उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में ले जाकर कोऑर्डिनेट भी करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि किसी का FIR हो रहा है तो सखी की टीम उसके साथ नहीं जाएगी, सखी की टीम उसके साथ जाएगी। तो निशुल्क अधिवक्ता या और किसी सहायता की जरूरत है, जो पैनल लॉयर्स डालसा से हमारे यहाँ बैठते हैं सिटिंग्स में, वो उनको बकायदा लेकर जाते हैं। इवन बहुत सारे केसेस में हमने पीड़ित क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाने में भी महिलाओं की काफी मदद की है। कितनी महिलाएं हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको रेस्क्यू करके हम लोगों ने एडमिट भी करवाया है। बहुत से ऐसे महिलाएं थी जो बंधक थी, उनको स्वतंत्र करके उनको लीगल हेल्प दिलवा के बहुत अच्छी कंडीशन में वो आज के डेट में है। जैसा कि रीमा ने बताया कि वो सब केसेस पे डिपेंड करता है, तो विक्टिम क्या चाहती है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या चाहती है, उसके बाद बाकी सब चीजें सेकेंडरी है, वो क्या चाहती है। क्योंकि बहुत सारे प्रकरणों में FIR होता है, लेकिन जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो उसमें DIR होता है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो उसमें प्रत्येक जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संरक्षण अधिकारी पदस्थ हैं, जो कि जिला कार्यालय में बैठते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के, वो सारे जो FIR के जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उसमें वो DIR फाइल करते हैं। DIR एक फॉर्मेट होता है जिसको भरकर संरक्षण अधिकारी जो है संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है और वहां से एक विक्टिम की जो है हियरिंग स्टार्ट होती है। तो ये दो अलग केस हैं। जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो हम DIR के प्रोसीजर में आगे बढ़ते हैं। बाकी हम अगर दहेज की बात करते हैं या फिर छेड़छाड़ की बात करते हैं या फिर सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं, इन सब चीजों की बात करते हैं, तो फिर इसमें बहुत तरीके की सहायता है। और घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो उसमें DIR का प्रावधान है, जिसके लिए अलग से जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वो जिले के समस्त घरेलू हिंसा के प्रकरणों को वही मॉनिटर करते हैं। इवन कोर्ट में जाने के बाद उन प्रकरणों में क्या चल रहा है, यदि लेट हो रहा है तो किन कारणों से लेट हो रहा है, वो सारी चीजों की निगरानी और पैरवी जो है संरक्षण अधिकारी करते हैं।
तो जैसा बातचीत के बीच में आपने कहा कि ये बहुत जरूरी है, महिला का फैसला क्या है, कि हर एक चीज महिला के फैसले पे ही आधारित होती है, महिला क्या करना चाहती है, तो ये कहीं ना कहीं जुड़ता है जो हमारा ह्यूमन राइट्स है कि वो अपना फैसला खुद ले, राइट टू हैव डिसीजन फॉर हर ओन लाइफ, ये हम कह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है, वो हिंसा को निकालने के लिए वो जोड़ता है उनके खुद के अधिकार, उनके फैसले लेने के अधिकार, तो इस बारे में और भी थोड़ा विस्तार से बताइएगा।
देखिए जैसे मैंने बताया कि महिला क्या सोचती है ना, इससे पहले रीमा ने भी बताया कि वो जब आती है तो वो डिपेंड रहती है अपने मदर पे, मदर डिपेंड रहती है अपने हस्बैंड पे, मतलब उसके फादर पे। तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति के अधिकार है, समानता का अधिकार है, जो मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं, हाई कोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि भाई यदि एक किसी के मौलिक अधिकारों का हनन भी हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्राइम है, लेकिन हम लोग उसके प्रति अवेयर नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीजें चल रही हैं, या लिंग आधारित हिंसा पर जो तरह तरीके के लोग आज पूरी एजेंसी काम कर रही है, तरह तरीके के कार्यक्रम चला रहे हैं, उनका यही उद्देश्य है कि जो महिलाएं आज तक ये समझ नहीं पाई हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, एटलीस्ट वो लिख लें तो कम से कम बात तो करें। जब हम बात करते हैं मेन स्ट्रीम के कार्यकर्ताओं की बात मैं करूं यदि, तो वहां पर भी कितने लोग ऐसे हैं जो घरेलू हिंसा का सामना कर रहे हैं। रायपुर के बाद बिलासपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के प्रकरण आते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों का नजरिया बहुत सामान्य है कि भाई ये तो होता है, वो अपने आप में उतना जटिल है। एक बार कोई हमारे साथ कुछ छेड़छाड़ करता है तो हम FIR करवाते हैं और कोर्ट में केस लड़ते हैं, कुछ गलत होता है तो हम करते, लेकिन जब हम बात घरेलू हिंसा की आती है तब हम वहां पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों को जानना समझना इस चीज को आगे बढ़ाता है कि हम कितना अपने लिए आगे बोल सकते हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या है। महिलाओं को ये जानना पड़ेगा, महिलाओं को समझना पड़ेगा, समझने के बाद उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब हम खुद ही नहीं जान रहे कि भाई हमारी भी स्वतंत्रता है, हम निर्णय ले सकते हैं, हमारी भी स्वतंत्रता है कि हम बोल सकते हैं, हमारा ये अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता है कि हमें भी बराबरी का स्थान दिया जाए, वो सब उनको पता होना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता हमारी है, हम पैसे कमाते हैं तो ATM हम रखेंगे, हम अपनी इच्छा से अपना पैसा खर्च करेंगे, हम उस पारिवारिक जिम्मेदारी में अपना सहयोग देंगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं क्या है, हम लोगों को पता है लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और जिनको पता नहीं है फिर उनको तो पहले इन बातों को समझाना पड़ेगा। हम बहुत सारे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, स्कूलों में रैलियां निकाल रहे हैं, नारा लेखन करवा रहे हैं, रंगोली के माध्यम से एक सूचना दे रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, कि हम बोल सकते हैं, हमारा बोलने का, सोचने का, समझने का, समानता का, हम सब का हमारा अधिकार है। और अगर हमारी फैमिली इसका हनन करती है तो वो भी कहीं ना कहीं क्राइम है और हम उसके लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डोमेस्टिक वायलेंस। हमेशा महिलाओं को कमतर आंकना, अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को पहले आप जानिए, समझिए, इसीलिए ये सारी चीजें चल रही हैं। हम क्यों गांव-गांव में फोकस कर रहे हैं, हम क्यों जाकर स्कूलों में बता रहे हैं कि वहां पर जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न है या फिर कहीं ऑफिस है, या ये हर चीजें कवर कर रही हैं, कहीं ना कहीं नुक्कड़ नाटक से क्यों संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, कोई तुम्हारा पैसा भी छीन रहा है तो वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस है, सबके बीच तुमको बैठाकर खाना नहीं खिलाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस है, तुम जो सबके बाद बचा कुचा खाना खा रही हो वो भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस है। तो महिलाओं इसको अपना कर्तव्य समझती है, तो वो कर्तव्य, समझौता और शोषण, इनके बीच में एकदम बारीक लाइन है, उसको वो समझ नहीं पाती, उनको वो क्रॉस नहीं कर पाती। तो अपने मौलिक अधिकारों कर्तव्यों को समझना बहुत जरूरी है, न समझना ही कहीं ना कहीं हिंसा का कारण है।
जैसा कि अभी हमने मौलिक अधिकारों की जागरूकता की बात, तो कई बार महिलाएं जो अपने अधिकारों को जानती है वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती है, डिसीजन जो लेती है वो खुद के लिए वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती है, उन्हें पता है कि ये चीजें सही है ये चीजें गलत है लेकिन वो आवाज उठाती नहीं है, उन्हें हमेशा डर लगा रहता है। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
देखिए, अब कॉन्फिडेंस लेवल की बात ऐसी है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, एक चोट बार बार एक जगह दी जाए तो कहीं ना कहीं वो काम करती है। जैसे जब हम कुएं से पानी खींचते हैं तो पत्थर तक में उसके निशान पड़ जाते हैं। तो ये प्रयास आपको हमेशा करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने चर्चाओं में मानसिक रूप से स्वतंत्र होने की बात की थी, ये कहीं ना कहीं उससे ही संबंधित है कि हम लोग पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन वो सोच कि यहां से यदि मैं कुछ विरोध करती हूं और मुझे घर से चले जाने को कहा जाता है तो समाज या मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने कहा ना कि बहुत सारी औरतों को आप देखेंगे कि वो एक मजदूरी करती हैं लेकिन वो उन पढ़ी लिखी महिलाओं से लाख गुना बेहतर अपना निर्णय लेती हैं, क्योंकि जो मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है वो किसी भी स्थिति में स्वतंत्र है वो कभी अपना डिसीजन नहीं ले पाएगा। स्वतंत्रता यहां से जरूरी है। हम लोग हमेशा क्यों विचारों की और आधुनिकता की बात करते हैं। आप कपड़ों से आधुनिक न बने, आप इच्छाओं से आधुनिक न बने, लेकिन आपकी सोच आधुनिक होनी चाहिए। तो पहले तो आपको स्वतंत्र होना है अपने दिमाग से, अपनी सोच से। उन बेड़ियों को जिस दिन आप तोड़ देंगे ना, उस दिन फिर कोई चीज आपको नहीं रोक सकती। मुझे किसी ने मारा है, मैं इसके अगेंस्ट लड़ूंगी। और लड़ाई इतनी आसान नहीं है। आप एक जगह अगर थाने पहुंचते हैं, वहां 10 प्रश्न आप पर उठते हैं कि तुम गलत हो, तुम बदमाश हो, तुम ऐसी हो। उन सब का एक एक बातों का विरोध कर फिर हम वहां से जो लड़ाई हमारी स्टार्ट होती है वो लास्ट तक हमारी चलती है। फिर हमारे आसपास के लोग, हमारा परिवार, जो हमारे साथ रहना चाहिए वो तक हमारे अगेंस्ट रहता है। तो कहीं ना कहीं हम अगर यहाँ से स्वतंत्र थे तो जो आज हमारा साथ नहीं दे रहे हैं हमारी हिम्मत देख के वो कल भी देंगे, क्योंकि बहुत सी महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो उनकी फैमिली पीछे से आती है। तो एहसास एक ऐसी चीज है जो आप एक दिन में नहीं करवा सकते, ये एक सोच को बदलने का जो एक मुहिम कह लीजिए, ये ऐसा है कि ये आपको निरंतर करना होगा।
जरूरी है कि महिलाएं हिम्मत करें और
आवाज उठाएं। मैंने आपको कहा ना, थप्पड़ एक या दस की बात नहीं है, बात ये है कि कोई आपको एक थप्पड़ भी नहीं मार सकता। तो ये हमारी सोच है और इसको हमको आज नहीं कल नहीं निरंतर प्रयास करके हमको बदलना पड़ेगा।
तो जैसा आपने कहा कि ये बात एक थप्पड़ की नहीं है, ये बात सम्मान, और अगर वो सम्मान हमें नहीं मिला तो वो सम्मान कहीं ना कहीं आत्म सम्मान के घात पे बात आ जाती है। तो हम सभी श्रोताओं से और खासकर हमारे महिला श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आपके आसपास भी या आपके साथ भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो बस जरूरत है एक कोशिश की, एक कदम उठाने के। इस 16 दिन के सक्रियता अभियान में हमारी कोशिश है आप सभी तक जागरूकता भरी बातें पहुंचाने की। तो हमारे इस बातचीत में, हमारी इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।